परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मोआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं। आज जब हम आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, आपके वचनों में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन को दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने, आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो निराश हैं, दुखी हैं और चिंतित हैं। पिता परमेश्वर, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, ताकि वे भी आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और ये भी कोई छोटे लोग नहीं थे, वे लेवी लोग थे। उन्होंने अपना ग्रुप खड़ा किया, अर्थात परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, और हम जानते हैं कि उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को बढ़ाते हैं और गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 4-7 पद को पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा, फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा, जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। यहाँ पर एक दिन वे मूसा और हारून के विरोध में एकत्र हुए, उन्होंने उनसे कहा, बहुत हो चुका, अब बस करो। अब परमेश्वर की ओर से मूसा उनसे कह रहा है, ओ लेवी के वंशजों, बहुत हो चुका, अब बस करो। हम गिनती 16 अध्याय उसके 8 से 11 पद में आगे पढ़ते हैं। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इसराइल के परमेश्वर ने तुमको इसराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो और इसी कारण तूने अपने सारे मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? क्योंकि मूसा और हारून की नियुक्ति तथा कर्तव्य परमेश्वर की ओर से ठहराए गए थे, अतः यह कुड़कुड़ाना व बड़बड़ाना वास्तव में परमेश्वर की ओर था। हम गिनती 16 उसके 12 से 14 पद में पढ़ते हैं। फिर मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे, क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तू हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया? क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। मूसा के विरुद्ध उनके इस दोषारोपण में इस तथ्य को नकारा गया है कि यदि वे कादेश बर्निया में उसकी अगुवाई को मानते तो अब तक दूध व मधु की प्रतिज्ञा देश में बस जाते। हम आगे पढ़ते हैं गिनती 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद में। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर, मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना, विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मामले में परमेश्वर को उसकी इच्छा को जताना होगा। हम गिनती 16 अध्याय उसके 18 से 21 पद में आगे पढ़ते हैं। सो उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारे मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यहाँ पर देखते हैं, तब हर एक व्यक्ति ने अपना धूप दान लिया, उन्होंने उसमें अग्नि रखी और उन पर धूप डाली और तंबू के द्वार पर खड़े होकर बोले, हम प्रभु का तेज अर्थात महिमा देखेंगे। हमने देखा कि उनके कुड़कुड़ाने के समय प्रभु का तेज दिखाई पड़ा और यहाँ विद्रोह के समय भी प्रभु का तेज समस्त मंडली को दिखाई दिया। हम गिनती 16 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? मूसा पुनः उसके लोगों के लिए विनती करता है। तब हम गिनती 16 अध्याय उसके 23 से 30 पद में पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इसराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। मित्रों, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन और उसके द्वारा नियुक्ति पदाधिकारियों का विरोध करना किसी एक व्यक्ति अथवा झुंड के लिए एक भयंकर बात है। किसी विशिष्ट आराधना पद्धति द्वारा परमेश्वर के लोगों को बांटना भी भयंकर बात है। परमेश्वर इस प्रकार के विरोध से अवश्य कठोरता से निपटेगा और उचित दंड भी देगा। हम गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 31 से 33 पद में पढ़ते हैं, वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। परमेश्वर ने किस प्रकार उनकी प्रताड़ना की, देखकर मन में आश्चर्य और भय उत्पन्न होता है। जिस प्रकार का पाप उन्होंने किया, उसका दंड भी उसी प्रकार से मिला। वह लोगों को कोरह और उसके झुंड से अलग करता है, फिर पृथ्वी को भी बांटकर बंद कर देता है। गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मित्रों, यह सच है, परमेश्वर मनुष्य के पाप के अनुसार ही दंड देते हैं। बूढ़े याकूब के जीवन में यह सब सच था, दाऊद के लिए भी यह सच था, पौलुस व अन्य प्रेरितों में भी यह सच ठहरा और हमारे जीवन में भी यह सच ठहरेगा। हम गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जितने इसराइली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चलाने वालों को भस्म कर डाला। मित्रों, वे मनुष्य इसराइल में अगुए थे, उनके विचार से उनकी सेवा कार्य में उन्हें अधिक महत्व मिलना चाहिए था, परंतु यह वर्तमान में हमारे समक्ष कितनी बड़ी चेतावनी है। अधिक लोगों में ईश्वर की सेवा करने का अद्भुत वरदान है, लेकिन यदि उन्हें किसी दीन ओहदे पर रख दिया जाए और वे सोचने लगे कि उन्हें तो कलीसिया को चलाना चाहिए। क्या आपको याद है कि दोरकस को सिलाई का दान था? प्राचीन कलीसिया के लिए यह दान इतना महत्वपूर्ण था कि पत्रस को उसे मृतकों में से जिलाना पड़ा। मित्रों, मेरा मानना है कि वर्तमान कलीसिया में हमें कम बोलने वाले और अधिक काम करने वालों की जरूरत है, न कि अधिक बकवास करने वालों की। कलीसिया के छोटे दीनहीन कार्यों को करने के लिए ऐसे ही नम्र लोग चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वरदान दोनों महत्वपूर्ण हैं। जलन और विद्रोह करने वाले परमेश्वर की ओर से दंड अवश्य पाएंगे। हम गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 36 से 40 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्तर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आवे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इसराइलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए, कि इसराइलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए, ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि बलवा करने वालों के कांसे धूप दान लेकर पीट पीट कर उनके पत्थर बनवा ले और उनके नाम सहित वेदी पर जड़ दे, जिससे वे इसराइली लोगों के लिए एक स्मृति चिन्ह ठहरे, और कोई भी जन जो हारून के परिवार का न हो याजक का कार्य नहीं करेगा और न ही वेदी पर धूप जलाएगा। अब हम आगे देखेंगे छठवीं कुड़कुड़ाहट। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 41 और 42 पद में लिखा है, दूसरे दिन इसराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरोध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। मित्रों, अगले दिन सारी रात विचार के बाद सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाती और दोष लगाती थी कि उन्होंने बलवायु को मार डाला, परंतु यह कार्य उनका नहीं पर परमेश्वर की ओर से था। ध्यान दीजिए, यहां फिर प्रभु का तेज प्रकट हुआ है। अब परमेश्वर कुड़कुड़ाने वाले लोगों को दंड देने वाला था, क्योंकि वे मूसा को दोषी ठहराए थे। जो व्यक्ति उनके और परमेश्वर के मध्य विनती निवेदन करता था, और परमेश्वर ने उसके न्याय दंड को नया मोड़ दे दिया। हम आगे देखते हैं गिनती 16 अध्याय उसके 44 से 50 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उस वेदी पर से आग रख कर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, और यह देख कर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। मेरे प्रिय मित्रों, जिस व्यक्ति के विरोध उन्होंने बगावत की उसी ने उन्हें बचाया, वह उनका मध्यस्थ बना। उसी प्रकार मानव परिवार ने जिसे क्रूस दिया वही हमें बचाता है। वह परमेश्वर और पापी का मध्यस्थ है। वह आज मुझे और आपको भी बचाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के कारण क्रूस पर मरा ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 17 से आरंभ करेंगे, और इसमें हम इन विषयों पर विचार करेंगे। हारून की लाठी पर कलियां। अब परमेश्वर हारून के याजकीय पद को दृढ़ करते हैं और उसे महायाजक पद पर नियुक्त भी करते हैं। इसको पुनरुत्थान द्वारा स्थापित किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं हारून का पद पुनरुत्थान द्वारा प्रमाणित होता है। गिनती की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 से 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इसराइलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इसराइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। मित्रों, इसराइली वंशज हारून के विरोध यह कहकर कुड़कुड़ाते हैं कि केवल वही अकेला उन्हें परमेश्वर के समक्ष प्रतिनिधित्व करने को नहीं है। यह उसके विरुद्ध एक बगावत अर्थात एक विद्रोह था। हम गिनती की पुस्तक 17 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं। सो मूसा ने इसराइलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। सो 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पात्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। अब परमेश्वर इसे अद्भुत तरीके से प्रमाणित करता है। प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा दी कि प्रत्येक प्रधान कुल 12 गोत्रों में से एक छड़ी लेकर आए। यह लाठियां बंजर भूमि से एकत्र की गई थी। संभवतः उन्हें किसी छाव से सजाया भी गया हो, परंतु वे सूखी लकड़ी थी। तब यह लकड़ियां तंबू में प्रभु के समक्ष रखी गई। हारून की लाठी भी उनके मध्य में थी और दूसरों के सदस्य सूखी थी। परंतु तब क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं 17 अध्याय के 8 पद में लिखा है, दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे हैं। यह मृतक से जीवित हो गया, अर्थात मृतक से जीवित होना है। हारून का महायाजकीय के पद पुनरुत्थान द्वारा दृढ़ होता है। हारून की लाठी में कोपलें, कलियां, फूल और पक्के बादाम भी लगे। मृत्यु पर्यंत जीवन, पुनरुत्थान, पतझड़ के पश्चात ठंड से सिकड़े पौधे में बसंत ऋतु में पत्तियों का निकलना पुनरुत्थान नहीं कहलाता, और न ही अंडे से बच्चा, क्योंकि अंडे में जीवन अंश निहित है। पुनरुत्थान का सिद्ध उदाहरण हारून की लाठी की तरह ही प्रभु यीशु का पुनरुत्थान है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का याजकीय पद भी उसके पुनरुत्थान के तथ्य पर ही आधारित है। इब्रानियों के 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से इसे बताया गया है कि यदि वह यहाँ पृथ्वी पर रहता तो याजक पद का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वह लेवी वंश से नहीं था। उसके पुनरुत्थान ने ही उसे पुरोहित पद प्रदान किया। हम इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक महापुरोहित हारून की भांति परमेश्वर द्वारा बुलाया जाता है। मेरे प्रियो, हारून परमेश्वर द्वारा बुलाया गया पुरोहित है। इसका प्रमाण उसकी कोपलों सहित लाठी थी जो पुनरुत्थान को प्राप्त करती है। मित्रों, प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठकर हमारा महायाजक बना। उसका पुरोहित पद अपरिवर्तनीय है। अतः हम इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं, यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा परमेश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें पूर्णतः बचाने में समर्थ है, क्योंकि वह उसकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित है। मेरे प्रिय मित्र, इस क्षण भी वह पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वह आपके और मेरे लिए वहां पर आज उपस्थित है। हमारे लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात यह है कि किसी समय भी उसके निकट हम पहुंच सकते हैं। वह हमारा महायाजक है जो हमारे लिए सदा विनती करता है। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, सो जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे मित्र, क्या आपको दया की जरूरत है? आज आपको मदद की आवश्यकता है। क्या आप जीवन में निरस हैं? क्या जीवन निरस बन गया है? क्या आप सुस्त, निकम्मा और लाभकारी भी नहीं है? तो प्रभु यीशु के निकट जाइए। वह वहां ऊपर विराजमान है। आपका महायाजक आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप अकेले हैं? उसके निकट जाइए। क्या जीवन परीक्षाओं के विरुद्ध लड़ने में व्यस्त हैं परंतु सफलता क्यों नहीं मिलती है? जीवन क्या ऐसे संघर्ष हैं कि आप हार मानने में जुटे हुए हैं? क्या जीवन भयानक गलतियों से ग्रस्त है और इस चौराहे पर निर्णय के लिए बुद्धि चाहिए? मेरे मित्र उसके पास जाइए, वह हमारा महायाजक है जो मृतकों में से जी उठा है, वह जीवित प्रभु है, वह वहां ऊपर हमारे लिए आज भी निवेदन करता है, वह चाहता है कि हम उसके पास आएं। हम गिनती की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सो मूसा ने उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इसराइलियों के पास ले आया और उन्होंने अपने अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून की लाठी जिसमें कोपले, फूल और बादाम के फल भी उगे, उसे साक्षी और चिन्ह स्वरूप रखना चाहिए। यह लाठी उन तीन वस्तुओं में से थी जो साक्षी संदूक में रखी गई। वाचा का संदूक चारों ओर सोने की परत से जड़ा हुआ था, उसके अंदर स्वर्ण कटोरा जिसमें मन्ना था, हारून की लहलहाती लाठी तथा 10 आज्ञाओं की तख्ती थी, पत्थर की पट्टी पर लिखित 10 आज्ञाएं, मन्ना का बर्तन और हारून की लाठी, तीनों वस्तुएं साक्षी संदूक में सुरक्षित तंबू के भीतर रख दी गई। इस लाठी के द्वारा ही हारून के पुरोहित पद का प्रश्न सदा काल के लिए एक हल अर्थात निर्णय बन गया। मेरे प्रिय मित्रों, हारून ने अपनी इच्छा से महायाजकीय पद को ग्रहण नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उसे यह स्थान दिया ताकि उसके द्वारा वह सेवा ली जा सके। आज कई लोग हैं जो अपने से सेवा लेना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें देना नहीं चाहते। क्या आज आप भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसी कुछ बात है तो प्रभु के पास आए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। मेरे प्रियो, आप अपने से, अपने बुद्धि और ज्ञान से अपने कार्यों को न चुने, परंतु परमेश्वर से सहायता मांगे और निश्चय जाने कि वह आपकी सहायता करेंगे और एक सही मार्गदर्शक के रूप में आपकी अगुवाई करेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा भी आपने बहुत सी गुण बातों को सीखा है जो आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी और आशीषमय है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां, हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर मेहरबानियां। उजड़े मुकद्दर सवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं,
बिगड़े बने सरकार।